हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 30 और 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। इस अगर हम इस खाली चैप्टर के नाम को देखते हैं तो वहां पर कहीं ये नहीं लिखा कि दंड किसको, उसका नाम नहीं लिखा, अश्वत्थामा का नाम नहीं लिखा। हालांकि ये द्रोण पुत्र कौन है, अश्वत्थामा है, और उसकी मिस्टेक के उसने कोई मिस्टेक की है जहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र उन्होंने चलाया है। और सबसे पहले तो उन्होंने पहली मिस्टेक क्या की कि अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जब अर्जुन उसे बदला लेने आ रहे हैं तो उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गलती पर गलती किए जा रहे हैं, लेकिन है कौन, द्रोण पुत्र। द्रोण का मतलब होता है ये गुरु है, ब्रह्मा है, और गुरु है पांडवों के। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि हम हमारे मतलब बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं जो भी कार्य करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो पूरा का पूरा ब्लेम आता है माता पिता के ऊपर और गुरु के ऊपर। यानी अगर अर्जुन कोई गलती करता है तो अर्जुन कुंती पुत्र है और अर्जुन द्रोण शिष्य है। तो अगर कोई, वैसे तो अर्जुन का क्योंकि वो गाइडेंस ले रहा है भगवान की, तो गलती का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी, बताने का यहाँ पर मतलब ये है कि हम कोई यदि गलती कर रहे होते हैं तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम जाता है, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे माता पिता की और हमारे गुरु। यहाँ पर देखो भागवतम में आया है कि द्रोण पुत्र को दंड दिया जा रहा है, यानी कि द्रोण के पुत्र की ऐसी शिक्षा थी कि वो सही तरह से अपने उस शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाया। उसने उस शिक्षा को, हालांकि उसी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी शिक्षा दी थी, उसी ने अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी थी, लेकिन क्योंकि पुत्र के प्रेम में उसने उसको ऐसी शिक्षा दे दी थी जिसके लिए वो योग्य नहीं था। वो पुत्र था इसलिए, अभी देखो पहले जमाने में क्या होता था कि जब तक आप जिस योग्य होते थे आप गुरु आपको उतना ही पढ़ाता था। मतलब अगर आपके अंदर योग्यता नहीं होती थी तो वो उतना नहीं, वो चीज नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि गुरु को जो भी आ गया उसने उसको पढ़ा लिया फिर उसको भले वो किसी तरह से भी मिसयूज करे, ऐसा नहीं। आपके अंदर जितनी योग्यता होती थी उतना ही आपको ज्ञान दिया जाता था। जैसे दुर्योधन के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं था, हालांकि दुर्योधन भी उसी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन जो शिष्य जितना क्वालिफाइड होता है गुरु उसको उतना ही शिक्षा देता था। आधुनिक में इस तरह नहीं होता। आधुनिक ज्ञान में अगर हम देखें तो जिसके पास भी पैसे आते हैं उसको वो सारी गन भी दे दी जाती है, मशीन गन भी दे दी जाती है, एटम बम भी दे दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो नहीं देखते कि ये उस वस्तु का कितना दुरुपयोग किया कर सकता है। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य स्नेह करते थे, उनका पुत्र था अश्वत्थामा, और उनको उसने वह विद्या दे दी थी जिसके वो योग्य नहीं था, तो जिसके कारण अभी उसको दंड मिलेगा। तो हमने देखा कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र पूरे वायुमंडल में अग्नि की तरह भड़क उठा तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह तो ब्रह्मास्त्र की अग्नि है जो कि अश्वत्थामा ने चलाया है, और उसे ये भी नहीं पता कि इस ब्रह्मास्त्र को लौटाया कैसे जाता है। अब तुम ऐसा करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है तो किसी और अस्त्र से तो शांत होने वाला नहीं है, तो इसको शांत करने के लिए, क्योंकि तुम तो सैन्य विज्ञान में अत्यंत ही पटु हो, भगवान ने अर्जुन को कहा, अस्त्र क्यों हस्त तेजसा, कि आपको तो सारे अस्त्रों का ज्ञान है, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को शमन करो। तो उतना कहने के बाद सुत गोस्वामी ने बताया कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः, क्योंकि जो अर्जुन था वो बहुत ही युद्ध था और वो कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ इंतजार किसका कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण के आदेश का। और जैसे भगवान ने आदेश दिया तो फिर उसने क्या किया, स्पिष्ट वापस्तम परिक्रम्य धाम धामस्त्र सौंदर्य, उन्होंने सबसे पहले आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कि उसने भी अपने ब्रह्म उस अस्त्र को शमन प्रशमन करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब जब दो ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से जब ब्रह्मास्त्र आने लगे, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र पहले से चला हुआ था, अब दो ब्रह्मास्त्रों की अग्नि कितनी भयानक है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सूत गोस्वामी उस दृश्य को बताते हैं, वे कहते हैं श्लोक नंबर 30, कृपया मैं रिसाइट कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, संहत्यान्योन्यम उभयो तेजसी शरसावृते आवृत्य रोदसी खंच ववृधातीर्कवहनिवत्। 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 संहत्यान्योन्यम उभयो तेजसी शरसावृते आवृत्य त्यरोदसी खंच ववृधातीर्कवहनिवत्। शब्दों का अर्थ संहत्यान्योन्यम, संहत्या मतलब संयोग से, अन्योन्यम मतलब परस्पर, उभयो दोनों की तेजसी ज्वालाएं, शर संवृते, शर मतलब हथियार, संवृते मतलब घेरते हुए, आवृत्य रोदसी खमच, आवृत्य मतलब आच्छादित करके, रोदसी मतलब पूरा आकाश, खमच यानी बाह्य अंतरिक्ष भी, ववृत्य वविधाते का मतलब होता है बढ़ते हुए, अर्क सूर्य का गोला, वहनिवत अर्थात अग्नि के समान। अनुवाद, जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य आकाश तथा लोकों के संपूर्ण आकाश को ढक दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र की दीप्त से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से मिश्रित अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा परमाणु शक्ति से विकिरण से कहीं अधिक होती है। परमाणु बम के विस्फोट से एक ही मंडल उड़ सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता, अतएव प्रलयकालीन उष्मा से इसकी तुलना की गई है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र चला है अभी, जो दो ब्रह्मास्त्र, लेकिन असल में क्या होता है, ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो इतना ज्यादा तेज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा तेज होता है, इतनी ज्यादा अग्नि होती है, जितना कि प्रलय के समय जब अग्नि होती है ना, प्रलय के समय जब सूर्य के गोले में से अग्नि निकल रही होती है, ऐसा है कि उस समय सूर्य के अंदर अभी जैसे ताप है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सूर्य सूर्य में से ताप निकलता है और संपूर्ण सृष्टि में पूरा अग्नि ही अग्नि हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि संहत्या नौनम उभयो तेजसी शरसंवत, कि जब दोनों हथियार एक साथ भड़क दोनों जब चले तो इस तरह से अग्नि भड़कने लगी कि पूरे आकाश में और पूरा जितना अंतरिक्ष है, जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो उस अग्नि से दहकने लगे और इतनी भड़कती हुई अग्नि थी जैसे कि प्रलय की अग्नि यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई है कि भौतिक जो विज्ञान है, जो एटम बम बनाते हैं या न्यूक्लियर बम बनाते हैं, वो तो केवल एक ही मंडल, ये जो एक ही प्लैनेट को, जैसे पृथ्वी पर चलता है तो दूसरे प्लैनेट में पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई ना बॉम्ब विस्फोट हुआ है या वो, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हो वो एक साथ नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये फिर भी यहाँ पर ये बात समझने की है कि ब्रह्मास्त्र केवल अपने लक्ष्य को भेदता है। अब भौतिक जितने भी वेपन्स हैं उनमें और जो आधे ये जो अस्त्र है ना वैदिक विज्ञान से जो हमें समझ में आते हैं, उनमें इतना डिफरेंस है कि जो वैदिक विज्ञान है वो कभी भी दूसरे का नाश नहीं करता। अभी जैसे ब्रह्मास्त्र अगर अश्वत्थामा चलाता है ना, तो वो ब्रह्मास्त्र चलाएगा अगर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र चल के उत्तरा के गर्भ को तो नष्ट करेगा लेकिन उत्तरा को क्षति नहीं होगी। यानी कि उसके अंदर इतना पावर होता है कि बस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदता है। लेकिन आज का दूसरा जो ये भौतिक विज्ञान है वो तो अगर किसी को नष्ट करना हो, बॉम्ब फेंको, तो फिर पूरा अड़ोस पड़ोस का जितना भी कितने कोस तक लोग नष्ट हो जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है। तो लेकिन ब्रह्मास्त्र में और जैसे वैदिक विज्ञान के जितने भी अस्त्र हैं उनमें और ये जो भौतिक विज्ञान है ना उसमें बहुत अंतर है और उनमें पावर भी इतना ज्यादा होता है कि वो तीनों लोगों को, यहाँ विष्णु प्रभुपाद ने बताया, ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। जितना भी ब्रह्मांड है, जितनी ये सृष्टि है, उसको नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसको प्रलयकालीन उष्मा से इसकी तुलना की गई है। आगे कहते हैं सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 31, कृपया रिसाइट कीजिए। दृष्ट्वा, इस प्रकार देखकर अस्त्र हथियार तेजस उष्मा तू, लेकिन तयो दोनों की तीन लोकान अर्थात तीनों लोकों को प्रदहत जलाते हुए महत बुरी तरह दहियमाना जलाते हुए प्रजा जनता सर्वा सर्व सावर्तकम वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है अमंसत सोचने लगा। अनुवाद, तीनों लोकों की सारे लोग उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से जल भून गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तीन लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊपर, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामर्थक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी जीव लोक, कोई भी लोक जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ बुद्धि वाले भौतिकता वाले लोग सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालं पंगु लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दृष्टास्त्र तेजस यानी कि तीनों जितने भी लोग हैं त्रीन लोकांतर है कि ये इसमें से इतनी अग्नि निकल रही थी, जब दोनों अस्त्र ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो इतनी अग्नि निकल रही थी कि तीनों लोकों के सारे जीव उस अग्नि को महसूस कर रहे थे। यहाँ पर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को बताया, तीन लोक कान प्रधान महत, यानी तीन लोकों में जीव बसते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ये लोग इस तरह से घोषणा करते हैं कि अन्य प्लैनेट्स में ना कोई जीव नहीं बसते हैं, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स में भी जीव बसते हैं। क्यों? कि वो दूसरे प्लैनेट्स जो है वो भी पंच महाभूत से बने हुए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो सारे प्लैनेट्स बने हुए भौतिक सृष्टि के इन्हीं पंच तत्वों से। और होता क्या है कि हर प्लैनेट में एक तत्व ज्यादा होता है। जैसे हमारी पृथ्वी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, तो हम पृथ्वी पर रहते हैं तो उसी के अनुसार हमें वातावरण की आवश्यकता होती है। और दूसरे प्लैनेट्स में भी, जैसे किसी किसी प्लैनेट में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, किसी में जल तत्व ज्यादा होता है, तो वो जो शरीर मिलता है ना जीव को वहाँ वहाँ के लोकों में, तो वो शरीर भी वैसे ही पर्टिकुलर लोक में रहने के योग्य होता है। अब जैसे सूर्य लोक में भी जीव है, अगर सूर्य लोक में जीव नहीं होते तो भगवान कैसे कहते कि इमं विवस्वते योगम, कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया। अब सूर्य देव का एक लोक है, वहां पर जीव है, तभी तो जाके सूर्य देव को ये भगवान ने ये सारा ना ज्ञान दिया है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बताया न एनम दहति पावक, कि जो आत्मा है उसको तो अग्नि नहीं जला सकती, सिर्फ शरीर को जलाती है। तो शरीर को अगर सूर्य लोक के प्लैनेट में भगवान को भेजना होता है उनके कर्मों के अनुसार, तो उनको शरीर भी उसी के अनुसार मिलता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं दृष्टास्त्र तेजस्तु तयोस्त्री लोकान प्रधान, कि जितने भी लोक हैं उन सब में जितने भी जीव हैं वो सब झुलस रहे थे, जल बुन रहे थे उसमें। और दैय माना प्रजा सर्वा, वो सारे के सारे जीव, सभी लोग उस कौन सी उष्मा को फील कर रहे थे, सावर्तकम। अमरसत का मतलब होता है कि ऐसी सावर्त अग्नि होती है जो कलयुग के अंत में आती है। जब कलयुग के अंत में प्रलय होने वाली होती है ना, जब हर जगह सूखा हो जाता है, सूर्य का ताप करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और शास्त्र कहता है भुक्ता भुक्ता प्रलीयते, कि बारंबार इसी तरह से जन्म मृत्यु होते जाते हैं। और जैसे ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, या ब्रह्मा के चार युग समाप्त हो जाते हैं, फिर एक छोटा प्रलय आता है, फिर जब ब्रह्मा की पूरी आयु समाप्त हो जाती है, पुरसार का सारा जल में हो जाता है और जीव जो है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार पुनः दोबारा से सृष्टि क्रिएट होने के लिए वेट करते हैं कि कब से दोबारा से, क्योंकि कारण दक्षिण विष्णु के अंदर सारे देव सुप्त अवस्था में बैठे होते हैं और जब दोबारा से भगवान सृष्टि को रचना चाहते हैं तो उसमें से वो फिर उनको उनके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। हमारा इस संसार में मनुष्य का जीवन 100 साल का है, देवताओं का जीवन जो स्वर्ग लोक में रहते हैं उनका 10,000 साल की वह आयु होती है उनके पास। इस संसार में बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जिनकी आयु कुछ घंटे तक की होती है, कुछ कीड़े कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ दिनों की होती है, कुछ जीव जो है ऐसे भी हैं जो कुछ महीने तक रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो कुछ साल तक रहते हैं और कुछ जैसे देवता, मनुष्य तो 100 साल जीता है, देवता 10,000 साल जीते हैं। और भगवद गीता बताती है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, सहस्त्र युग पर्यंत, यानी एक युग की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 4,32,00,000 ईयर्स की, यानी 43,00,000 साल का एक चतुर्युग होता है, सतयुग कलयुग द्वापर और त्रेता। 43,00,000 युग जब 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,32,000 साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर 4,32,000 साल की ब्रह्मा जी की एक रात होती है और रात में प्रलय होता है। तो फिर जब सारे जीव उस प्रलय में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और फिर दोबारा से जब भगवान क्रिएट करते हैं संसार को, तो फिर कोई गारंटी नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा कि इस बार जिसको मनुष्य देह मिला है तो दूसरे जन्म में उसको गारंटी है कि मनुष्य देह ही मिलेगा। भले ही मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत बहुत परिश्रम किया है, लेकिन इस जन्म में आप क्या कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको मृत्यु के समय आपकी क्या चेतना होती है। संसार में जीव जब तक जी रहे हैं तब तक आप क्या कार्य करते हो उसी के अनुसार आपको दूसरा जन्म मिलेगा। कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलेगा, दूसरा जन्म मनुष्य का मिल सकता है। भगवान ने क्या कहा, तथा देहांतर प्राप्त देरस्तत्र नमुयत, कि दूसरा जन्म मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जानवर भी बनाया जा सकता है, किसी भी प्लैनेट पर भेजा जा सकता है, कहीं पर भी कीड़ा भी बनाया जा सकता है, कुत्ता भी बनाया जा सकता है, गधा भी बनाया जा सकता है, परंतु हमें ये जो संसार में ये जो अवसर मिला है ना, आज हम पृथ्वी लोक पर हैं, हमें शास्त्र मिला है, गुरु मिला है, आधार मिला है भक्ति का, भक्ति का जो बीज मिला है गुरु महाराज और गौरंग महाप्रभु की कृपा से, हमें उसको यूज करना, हमें ये संसार में और अपने इस जन्म में जो जो हमें फैसिलिटीज मिली हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, उसका प्रयोग करके हमें ऐसी जगह को प्राप्त करना है, यत कत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर पहुँचने के बाद बारंबार जन्म मृत्यु, ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन समस्त प्रॉब्लम्स से, इन समस्त कष्टों से हम बच सकें, ऐसी जगह को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये हम सोच रहे हैं कि अगर हम भक्ति करना शुरू हो जाएंगे खाली, तो फिर जो मॉडर्न साइंस इतना प्रोग्रेस कर रही है, इतनी तरक्की हो रही है, इतनी सारी इन्वेंशंस हो रही हैं, तो हम कोई भी बोलेगा कि कितना बैकवर्ड है कि अभी इस मॉडर्न साइंस के जमाने में भी ये खाली भगवान के पवित्र नाम का जप करता रहता है या फिर ना ये करता रहता है, भक्ति करता रहता है, इसको अपनी अभी यहाँ संसार में सब क्या बोलते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या तरक्की की है साइंस ने। पहले तो वो भी सुकून से जिंदा होता था जीव, आज अगर तरक्की है तो क्या हुई है, अगर हम अपनी हिस्ट्री पॉलिटिक्स हिस्ट्री को देखें तो क्या तरक्की हुई है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई एक छोटी सी गन से, ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई मशीन गन से, और उसके बाद राजीव गांधी को हत्या हुई एक एटम बम से, यही तरक्की है। यही केवल पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, ये तो बारंबार जन्म मृत्यु और उसके बाद वो क्या बनता है कोई गारंटी नहीं है कि उसे वो सारी फैसिलिटीज प्राप्त होती हैं, उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हमें ये सोचना है कि हम इस मनुष्य जन्म का किस तरह से सदुपयोग करें कि हम इसी जन्म को सार्थक करके अपने जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकें। तो ये कैसे संभव है, जब हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर करें तो अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है, कार्य तो दोनों का सेम ही है, सेम कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, परंतु उद्देश्य बिल्कुल अलग है। क्या उद्देश्य है, अर्जुन क्यों कर रहा है, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा मानकर भौतिक जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि यदि ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता तो, क्योंकि अश्वत्थामा प्रलय करना समस्त को नष्ट करना चाहता था, तो अगर वो अर्जुन जो नहीं चलाएगा तो फिर क्या होगा, सबका जितने भी भौतिक जगत है उनका नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान की आदेश के अनुसार वो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा मानकर कर रहा है। तो हमें भी कृष्ण कॉन्शियस में पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई है, पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हमारी अभी हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं अर्जुन जैसी हैं और कुछ बहुत सारी महत्व आकांक्षाएं अश्वत्थामा के जैसी। तो हमें देखना है कि हम अपनी कौन सी ख्वाहिशात को डेवलप कर रहे हैं, कौन सी ख्वाहिशात के को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य क्या है, क्या हम अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी वासना को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं या गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर वही कार्य हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति होती है, लेकिन वही कार्य यदि हम अपनी किसी सिनक की पूर्ति के लिए कर रहे हैं या अपने आप को सम्मान देने के लिए या मतलब किसी का नाश करने के लिए कर रहे हैं तो वही कार्य हमारे लिए अहित हो जाएगा, हमारे लिए जैसे यहाँ पर अर्जुन पूरा सरेंडर है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में 11.33 में भगवान कहते हैं, तस्वात्तम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षराजं समृद्धं मय्येवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सेव्यसाचिन्। कि तुम ये जो कुछ भी देख रहे हो, जितने भी जीव हैं यहाँ पर, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षराजं सम, तुमको खाली क्या करना है, मेरे आदेश का पालन करना है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम खाली खड़े हो जाओ तो जीत तो तुम्हारी अनिवार्य है, तुम्हारी गारंटीड जीत है, क्योंकि मैये वैते निहत्ता पूर्वमेव, मैंने पहले से ही सबको मार दिया है। अब क्या करना है, निमित्त मात्रम भवसं व्यसाची, कि अब तुम्हें केवल और केवल निमित्त बनना है, केवल तुम्हें मैंने ये एक मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना है, तुम्हें ये मैंने कार्य सौंपा है कि बस तुम्हें खाली आगे बढ़ना है। आगे मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ करने वाला, मैं हूँ सब कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ श्रेय पकड़ना है। श्रेय तुम्हें होगा कि अर्जुन ने युद्ध जीता। उसी तरह से जो भी कार्य है संसार में वो सारे के सारे भगवान के द्वारा हो चुके हैं। भगवान अभी जैसे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना, ये भगवान की इच्छा थी तो वो होना ही था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था, पृथ्वी चयाति यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, मेरा ये नाम का प्रचार पूरी पृथ्वी पर, चाहे कि जितने भी नगर और गांव है वहां पर सर्वत्र होगा। लेकिन श्रेय किसको मिला, शिला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करके वो पाश्चात्य देश में गए। अब 70 साल की उम्र में एक वृद्ध जीव जो कि बिल्कुल बूढ़ा है, वहां पर कौन पाश्चात्य देश में, वहां के वेस्टर्न कंट्रीज में कौन उनकी बात सुनेगा। लेकिन क्योंकि कार्य तो कृष्ण करते हैं अपने सारे कार्य जो है, लेकिन कोई आगे बढ़ता है और कृष्ण उनको पूरी शक्ति प्रदान करते हैं करने के लिए। तो यदि हम भी अपने गुरु महाराज के आदेशों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे तो उसका अगर निमित्त बनेंगे तो फिर सारा का सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, वो खुद ही उठाएंगे। हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक बात बहुत ही ध्यान देना है कि हम किससे श्रवण कर रहे हैं, क्या कर्तव्य है हमारा और किससे श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो फिर तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। श्रील गुप्त गोस्वामी बताते हैं, अवैश्रवा मुखाद्विन्ना पूत हरि कथामृत श्रवणम न कर्तव्यम। कि यदि आप किसी अवैष्णव के द्वारा भगवान की कथा भी श्रवण करते हो जो वैष्णव नहीं है, अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, बाकी वो तुमको वही भले शास्त्र पढ़ के सुना रहा है, श्रवणम न कर्तव्यम, खबरदार उससे सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी भाष्य सुनी ले हवे सर्वनाश। कि यदि आप मायावादी जीवों की बात सुनोगे तो आपकी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी हुए कृष्ण अपराधी, के वास्तव में मायावादी कृष्ण के बहुत बड़े अपराधी होते हैं। कृष्ण सुप्रीम पर्सन, कृष्ण सुप्रीम पर्सन है और मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी से कृष्ण इज नथिंग, भगवान नहीं है वो, कृष्ण के पास मतलब ये भी नहीं मानते। चलो शिला प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि शून्यवादी तो फिर भी अच्छे हैं कि वो मानते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के कान नहीं है, भगवान के भगवान का फेस नहीं है, भगवान का कोई चित्र नहीं हो सकता, तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो बचा क्या। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मायावादी तो शून्यवादी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, देखो शास्त्र क्या कहता है। अगर हम भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अब भगवान का कोई शरीर नहीं होगा, भगवान का कोई रूप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, तो उसके बारे में सोचेगा कैसे जीव। भगवान भक्ति का क्या मतलब होता है, भक्ति मीन्स थ्री थिंग्स, भक्त होना चाहिए, भगवान होना चाहिए और साथ में उसकी डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए। अब भगवान ही नहीं है तो सर्विस कहाँ से आएगी, भगवान की सेवा कब पॉसिबल है जब आपके सामने भगवान हो। अगर भगवान की विग्रह नहीं है, भगवान नहीं है, तो सेवा कैसे हो सकती है, तो फिर अगर सेवा नहीं है तो भक्ति कैसे हो सकती है। शास्त्र कहता है कि भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद्गीता में बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत, मैंने ही सब कुछ पैदा किया है और जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक जीव हैं उन सबका पालन करने वाला, पैदा करने वाला मैं हूँ। तो मैं जो बोल रहा है वो जाहिर सी बात है कुछ तो वो होगा ना जो बोल रहा है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं कि नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो कुछ उसने बनाया है वो सब भी मिथ्या है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान सत्य है, भगवान का स्वरूप भी सत्य है, वो पूर्ण है, वो कभी अधूरे नहीं हो सकते। जिनकी बनाई हुई है संसार का स्वरूप है तो भगवान कैसे रूप विहीन हो सकते हैं। तो शास्त्र कहता है वेद, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वेद न मानिया बुद्ध होया नास्तिक। के बौद्ध लोग को नास्तिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। और शास्त्र क्या कहता है, हम भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में भगवान कार्य कर रहे हैं, भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान का स्वरूप है, और जो भगवान को नहीं मान रहे हैं तो वो नास्तिक है। भले ही वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं शास्त्र की, वेदों की, जिसकी भी बता रहे हैं, लेकिन यदि वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते तो उससे नहीं सुनना चाहिए। तो श्रवण हमें शुद्ध वैष्णव से, जो भक्त हैं उनसे करना चाहिए, जो भगवान के अंदर विश्वास रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और यदि हम ऐसे किसी शुद्ध गुरु का सानिध्य में हम बैठ के भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, उनके आदेशों अनुसार भगवान की सेवा करेंगे, तो अवश्य अपने जीवन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।